नमस्कार दोस्तों, नई दिशा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं।
श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चलते चलते आज हमारा नई दिशा का सफर 10वें एपिसोड तक आ पहुंचा है
और अब तक हमने आपको कई जानकारियां HIV और एड्स के बारे में दी हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप भली भांति समझ भी रहे होंगे और उन्हें जीवन में उतार भी रहे होंगे।
दोस्तों, बहुत जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना, क्योंकि जीवन हर घड़ी एक परीक्षा है, एक इम्तिहान है और हम सही जानकारी और संयम से ही इसमें पास हो सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा तुमने प्रेमा। अब देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवन की इस रफ्तार में बस चले ही जा रहे हैं और रोजमर्रा की इस भागती दौड़ती जिंदगी में क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए और कैसी जागरूकता उनमें आनी चाहिए, इससे बिल्कुल अनजान है।
वो कैसे जगत?
वो ऐसे प्रेमा कि लोग HIV के बारे में, एड्स के बारे में जानकारी तो रखते हैं कि HIV और एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, मगर असलियत में जब किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में वो आते हैं तो बच निकलना चाहते हैं।
जबकि इस अवस्था में तो पॉजिटिव व्यक्ति को आपके साथ की और देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है।
इसीलिए आज हम अपने कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में इसी विषय पर बात करेंगे
कि जब आपका कोई साथी या जान पहचान में कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उसके प्रति आपका सही बर्ताव क्या होना चाहिए।
तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट जानो अनजाने की ओर। दोस्तों, जानो अनजाने में आज हम बात करेंगे HIV संक्रमण के बाद जीवन की, यानी कि अगर दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो जाता है तो उसके प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए जिससे वो एक आम व्यक्ति की भांति जीवन जी सके।
और इसके लिए सबसे पहले बात आती है उचित व्यवहार की। अधिकतर यही देखा जाता है कि संक्रमित होने के बाद लोग ऐसे व्यक्ति से दूर जाने लगते हैं। कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि खुद के घर वालों ने रोगी को घर से बाहर निकाल दिया। पर यकीन मानिए, इसे एक अत्याचार और जुल्म से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि जिंदगी के जिस मोड़ पर उसे आपके भावनात्मक बल की आवश्यकता थी, आपके साथ की आवश्यकता थी, आपने उसे छोड़ दिया, ये अत्याचार ही तो है ना। जबकि डॉक्टरों द्वारा भी यह प्रमाणित किया जा चुका है कि HIV या एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। साथ खाना खाने से, एक ही तौलिया इस्तेमाल करने से और एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करने से ये नहीं फैलती है।
तो फिर भी आज तक हम क्यों इन बेकार की भ्रांतियों में उलझकर किसी जीवन को समय से पहले ही खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं?
एक परिवारजन होने के नाते और एक मित्र होने के नाते सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है दोस्तों कि यदि हमारे दायरे में किसी को HIV संक्रमण हो गया है तो उसका पूरा ख्याल रखें, उससे संबंध तोड़ने के बजाय उसके साथ भावनात्मक संबंध बनाए रखें, यानी उसे जीवन के प्रति उत्साहित करें।
और फिर देखिए कैसे वो उस बीमारी को ठेंगा दिखाते हुए अपने मुकाम तक पहुंचता है। और इसका उदाहरण है कई ऐसे सफल व्यक्ति जिन्होंने HIV पॉजिटिव होने को अपनी कमजोरी नहीं माना और उनके मित्रों और घर वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया। नतीजा, आज वो सफलता के शिखर पर बैठे हैं।
वो भी ऐसे शिखर पर जहां खुद को स्वस्थ कहकर तिरस्कार करने वाले लोग कभी नहीं पहुंच सके। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जीने के लिए उम्र की नहीं, सबसे पहले जीने के जज्बे की जरूरत है।
और अब समय हो चला है हमारे दूसरे सेगमेंट भेजा फ्राई का, जिसमें आप दिखाते हैं अपना जज्बा सवालों के सही जवाब देने का।
दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा भेजा फ्राई सवाल था, HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या प्रतिक्रिया करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन A, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है।
और एपिसोड 5 के विजेता है विकास लोमेश नोएडा से। और अब है आपके सामने हमारा आज का भेजा फ्राई सवाल, जिसे सुनने के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने क्विज मास्टर जी के पास।
और आज का सवाल है, एक परिवारजन या मित्र के तौर पर HIV पॉजिटिव व्यक्ति से आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुनिए। एक परिवारजन या मित्र के तौर पर HIV पॉजिटिव व्यक्ति से आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? और सही जवाब देने के लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए, आपको उससे बात करनी बंद कर देनी चाहिए। बी, प्रेम व सद्भावना का व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि HIV एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। सी, उसे अस्पताल छोड़ आना चाहिए। और डी, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। ए, आपको उससे बात करनी बंद कर देनी चाहिए। बी, प्रेम व सद्भावना का व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि HIV एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। सी, उसे अस्पताल छोड़ आना चाहिए। और डी, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए।
इस आसान से जवाब को देने के लिए आपको करना है बस एक आसान सा काम। अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए ND10, भेजा फ्राई, स्पेस आपका ऑप्शन ABC या D, और भेज दें इसे 9717678223 पर।
और अब श्रोता, कार्यक्रम में समय हो चला है आज के मेहमान से बात करने का। जगत, आज हम किन से बात करने जा रहे हैं?
प्रेमा, आओ खुद ही उनसे उनका परिचय जान लेते हैं।
मेरा नाम अनुराधा मुखर्जी है और मैं नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ एज अ प्रोग्राम्स मैनेजर काम कर रही हूँ। नास फाउंडेशन HIV के ऊपर काम करता है और हमारा एक मुख्य कार्य है जो MSM कम्युनिटी या समलैंगिक कम्युनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं।
अनुराधा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि पुरुषों के बीच यौन संबंध हमारे देश में कितने प्रचलित हैं?
पुरुषों के बीच यौन संबंध हमारे देश में काफ़ी हद तक प्रचलित है और ये काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। ये अलग बात है कि समाज इसको मान्यता नहीं देता है और ज़्यादातर ये संबंध समाज से दूर रहकर लोग बनाते हैं।
इन संबंधों को मान्यता क्यों प्रदान नहीं है?
अगर हम भारतीय समाज को देखते हैं, जहां हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, शादी करेंगे और उनके बच्चे होंगे और वंश का नाम चलता रहेगा, तो वहां पर पुरुषों के बीच में अगर संबंध होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि माता पिता कोई इसमें लगता है कि शायद बच्चे बिगड़ गए हैं। और दूसरा, कानून के तहत भी इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड का जो है, उसके तहत कहा जाता है कि अगर दो पुरुष आपस में संबंध रखते हैं तो वो गैर कानूनी है, जिसकी वजह से भी समाज इन चीज़ों को शायद ढकना चाहता है, छुपाना चाहता है, और इसी वजह से शायद अभी तक हम लोग ये मान्यता नहीं दे पाए हैं।
और इसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं?
हम देख रहे हैं कि समाज में काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी चलाया जा रहा है। और जो सेक्शन 377 है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बदला जाए। जैसे कि नाज फाउंडेशन ने इसके अगेंस्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया है और उसकी सुनवाई पिछले साल तक चलती आई है, तो हम आशा करते हैं कि कुछ बदलाव इस कानून में भी आएंगे ताकि सामाजिक एक मान्यता भी मिल सके और इसको गैर कानूनी ना कहा जाए।
क्या पुरुष पुरुष यौन संबंधों से HIV की संभावना बढ़ जाती है?
जब दो पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि गूदा मैथुन किया जाता है, और गूदा में अगर चीरफाड़ होता है, जो शारीरिक तरल पदार्थ है जैसे खून हो गया, वीर्य हो गया, उसका आदान प्रदान होता है, जिससे कि HIV के होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि अगर दोनों पुरुषों में से किसी को इस तरह की कोई बीमारियाँ हैं तो उसमें भी HIV होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं।
और हमारा आखिरी सवाल कि जो पुरुष आपस में यौन संबंध बनाते हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
सबसे पहले अगर दो पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कंडोम का लगातार प्रयोग करें, और जितनी बार वो आपस में संबंध बनाए उतनी बार कंडोम का प्रयोग करें। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर एक ही पार्टनर के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए तो उसमें भी एचआईवी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा ये ज़रूरी है कि समाज में बदलाव आए, और अगर सामाजिक तौर पे हम इस समलैंगिक रिश्तों को एक मान्यता देंगे तो शायद ये खुलकर होंगे और लोगों में इस तरह के छुपने छुपाने की जो बात होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एचआईवी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एचआईवी के बारे में प्रदान की। हम आशा करते हैं कि श्रोता इसका जरूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी शुक्रिया कि इस विषय को आपने इतना ध्यान दिया और खुलकर इस पर हम आज चर्चा कर सके।
दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके खतों की ओर, यानी आपकी बात की ओर।
चिट्ठी आई है।
दोस्तों, आज का हमारा खत है दिनेश सिंह का अंधेरी मुंबई से, और वो पूछना चाहते हैं कि एचआईवी क्या है। सुनने को मिलता है कि एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है, तो ये क्या है? दिनेश जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एचआईवी नहीं एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये एक ऐसा वायरस है जो किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। वो प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में विषाणुओं से लड़ती है, और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने पर हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है और हमारे शरीर में रोग घर कर जाते हैं, और यही छोटी छोटी बीमारियां एड्स का रूप ले लेती हैं। और रही बात एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो ये पता खून की जांच के द्वारा लगाया जाता है। खून की जांच में अगर एचआईवी पॉजिटिव आता है तो मतलब है कि उस व्यक्ति को एचआईवी है, और नेगेटिव आता है तो मतलब है कि वो व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त नहीं है।
दोस्तों, यदि आपके मन में भी एचआईवी या एड्स से जुड़े कोई सवाल है या कोई भ्रम है तो इन सभी का समाधान है हमारे पास। आप हमें खत लिखकर सही जानकारी हमसे ले सकते हैं।
हम आपके नाम को गोपनीय रखकर आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा। साथ ही यदि चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, नई दिशा NAYEDISHAA@gmail.com।
और अब समय है ये जानने का कि जीवन की राह में अब जीवन किस मोड़ पर आ पहुंचा है, तो चलिए सुनते हैं हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की आज की कड़ी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शहर में सूरज जयपाल के कमरे में जाता है, जहां उसकी तबीयत ज्यादा खराब देख वो उसे अस्पताल डॉक्टर को दिखाने लाता है, और डॉक्टर जयपाल को उसका एचआईवी टेस्ट करवाने की सलाह देता है।
प्रधान अपने बेटे विनोद को फीस के पैसे देने शहर आता है, और वार्डन के द्वारा उसे पता चलता है कि विनोद की संगत ठीक लोगों के साथ नहीं है। वो विनोद से इस बारे में पूछता है, मगर विनोद इसे वार्डन का उसके खिलाफ चिढ़ने वाला व्यवहार बताकर टाल देता है। गांव में शीला गर्भवती है, वो राजन को इस बारे में बताती है। ये जानकर राजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर शीला इस बात से परेशान है कि सुमन इस बात को जानकर क्या महसूस करेगी। सुमन उनकी बातें सुन लेती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आइए अब सुनते हैं आगे। तो भाई सुरेंद्र, मुझे तो पहले लड़कियों के पास जाने से इतना डर लगता था ना कि जैसे लोग जंगल में बाघ के सामने जाने से डरते हैं, मगर फिर धीरे धीरे सब डर निकल गया।
मगर यार शंकर, ये बात मोहित को भी खुलकर बता, अब इसे भी तेरे अनुभव की जरूरत पड़ने वाली है।
तो तू ही बता देना अपने और पुष्पा के बारे में, क्या मुझे नहीं पता कि तुम दोनों क्या क्या हैं?
बस बस भाई शंकर, मैं मोहित को समझाने की बोल रहा हूँ और तू मेरी ही पोल खोले जा रहा है, और वैसे भी लड़कियों के मामले में तुझे तो मुझसे ज्यादा ही पता है ना।
तुम्हारी अगर ये बेफिजूल की बातें बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं?
क्या कहा, हम बेफिजूल की बातें कर रहे हैं
तो? और वैसे भी तुम दोनों की नजर में तो लड़कियां बस एक ही उद्देश्य से किसी की मित्र हो सकती हैं। यहां मेरी जान निकली जा रही है, कि पता नहीं सुमन मेरी चिट्ठी को लेकर क्या सोच रही होगी, और तुम होगे मजाक किए जा रहे हो।
लो भाई, हमारी तो नीयत और नजर दोनों ही खराब है। गांव में अगर कोई मजनू पैदा हुआ है तो वो है अपना मोहित।
सुमन, पता नहीं तुम मेरी इस चिट्ठी को पढ़कर क्या सोचोगी, मगर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पहले दिन से देखते ही मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति भावना थी, मैं उसे कोई नाम ही नहीं दे पाया। इससे पहले भी कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, मगर मैं खुद संकोच में रहता कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ या कहीं राजन सर को ये बात पता ना लग जाए।
सुमन, ओ सुमन, ले तू यहाँ बैठी है और मैं शीला मौसी से पूछ के तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ।
क्यों, तुझे पता नहीं कि मैं इस घर में सिर्फ अपने कमरे में ही मिलूंगी? यहाँ मुझसे बात करने वाला कौन है? और आगे से रविता, जब भी तुम मेरे घर आए तो शीला से मेरे बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या हुआ, तेरा मूड क्यों खराब है? फिर कोई बात हुई क्या?
रविता, यहाँ तो रोज की ही बात है ये। तू खड़ी क्यों है, बैठना।
ये क्या है, कोई चिट्ठी सी लगती है। किसकी चिट्ठी है ये सुमन?
रहने दे, उसे मत खोलना, वो मेरी
ये मोहित की चिट्ठी है ना। देख सुमन, मुझे ये जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि उसने तुझे इसमें क्या लिखा है, मगर तुझे सावधान जरूर करना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी है ना, सही नहीं है।
क्या सही नहीं है रबिता? मैंने अपनी जिंदगी में पाया ही क्या है, छोटी सी थी तो माँ गुजर गई, जीते जागते पिताजी को इस शीला ने मुझसे दूर कर दिया। आज मोहित का प्यार ही मेरे जीने का सहारा हो सकता है और कुछ भी नहीं।
ये सब नादानी की बातें हैं सुमन। हर बच्चे के लिए सबसे पहले उसका घर, उसके माता पिता ही उसका सहारा होते हैं, ना कि कोई बाहर वाला। और तू तो इस घर की अकेली बेटी है, तुझे तो खुद सोचना चाहिए सुमन कि तेरा एक गलत कदम, सिर्फ एक गलत कदम राजन सर के लिए कितनी बदनामी का विषय हो सकता है।
रबिता, जब मेरे बारे में इस घर में कोई सोचने वाला नहीं है तो मैं इस घर के बारे में क्यों सोचूं?
तू ऐसा कैसे कह सकती है सुमन कि तेरे बारे में यहाँ कोई सोचने वाला नहीं?
तुझे नहीं पता रबिता, यहाँ नए मेहमान के आने की योजना बन रही है, और उसके आने के बाद तुझे क्या लगता है कि इस घर में मेरी रही सही पूछ भी रहेगी? सब उसी पर ध्यान देंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा।
ये सब तेरे मन के वहम है सुमन। खैर, मैं तो तुझे सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी मर्जी तेरी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हुई तो माँ नाराज होगी।
अच्छा ठीक है।
अरे जयपाल, तू यहाँ बैठा है, और मैं तुझे लखन की चाय की दुकान में ढूंढ रहा था। क्या बात है यार, परेशान से क्यों है?
कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सोचा थोड़ी देर अकेले बैठ जाऊँ।
क्यों, घर की याद आ रही है क्या?
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं सूरज के साथ डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ
क्या
यार, डॉक्टर ने मुझे HIV टेस्ट के लिए कहा है, बस इसी बात से मुझे थोड़ी चिंता हो रही है।
तो इसमें चिंता करने की क्या बात है?
चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है, और तू पता नहीं डॉक्टर ने मुझे HIV टेस्ट के लिए क्यों कहा है।
तू भी यार जयपाल, बच्चों वाला होकर बच्चों जैसी बातें कर रहा है, अखबार नहीं पढ़ता है क्या?
क्या मतलब?
अरे यार, HIV टेस्ट भी तो सामान्य टेस्ट की तरह है। देख, जैसे बुखार होने पर डॉक्टर खून की जांच करवाने के लिए कहता है ना?
हाँ।
तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इस पे घबराने की क्या बात है?
हाँ, ये बात तेरे साथ नहीं हुई ना, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। अभी सूरज आने वाला है और उसके साथ मुझे टेस्ट के लिए जाना है। मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं यार, न जाने क्या होगा।
चिंता क्यों करता है यार, टेस्ट से पहले डॉक्टर तुझे प्री काउंसलिंग भी देगा।
प्री काउंसलिंग? अब ये क्या बला है भाई?
अरे बला नहीं है, जानकारी की बात है। प्री काउंसलिंग का मतलब है जब डॉक्टर तेरा HIV टेस्ट करेगा तो उससे पहले प्री काउंसलिंग के द्वारा तुझे HIV से संबंधित सारी जानकारी और इसके बारे में जो भी सवाल या भ्रम तेरे मन में है उनका समाधान डॉक्टर कर देगा। फिर तेरे लिए टेस्ट करवाना बिल्कुल अन्य टेस्ट की तरह आम हो जाएगा, सब ठीक होगा यार, बेफिक्र होकर जा।
रबिता, ओ रबिता।
जी दादी, बुलाया आपने?
हाँ, वो तेरी सहेली पुष्पा ही जा रही है ना?
कौन वो? हाँ हाँ, पुष्पा ही तो है। क्या बात है दादी, इतनी दूर से भी आपने उसे साफ साफ पहचान लिया।
अरे नहीं, अभी यहीं से होकर तो निकली है, लेकिन ना नमस्ते ना कुछ। इतनी शाम ढले ये रोज यहाँ से जाती कहाँ है?
दादी अब क्या बताऊँ, वो सुरेंद्र है ना, चक्की वाले चाचा का लड़का, उससे मिलने जा रही होगी।
मतलब कुछ प्यार मोहब्बत वाला मामला चल रहा है?
हाँ दादी, पता नहीं हमारे स्कूल के लड़के लड़कियों को पढ़ने से ज्यादा ये बुखार क्यों लग जाता है।
अरे ये सिर्फ तेरे स्कूल की बात नहीं है बेटा, जहाँ भी लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ेंगे वहाँ ये सब तो होना ही लाजमी है। और सही बताऊँ बेटा, तो मैं इस सब को गलत भी नहीं मानती।
लेकिन दादी पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब गलत ही तो है ना?
सही सोच की बात है बेटा, और साथ में जरूरत है संयम की। तो प्रेम भी कोई गलत या शिक्षा के बीच में रुकावट डालने वाली चीज नहीं है, लेकिन इस उम्र में बच्चे जल्दी भटक जाते हैं और जब संभलने की सुध आती है तब तक देर हो चुकी होती है।
तो इसका मतलब तो यही है ना दादी कि पढ़ने के समय में सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए, ना कि ये सब प्यार व्यार जैसी फालतू बातें।
सही कहा मेरी नानी माँ, सही कहा।
तो देखा जगत, कितनी समझदार है हमारी रबिता। वो समझती है कि ये उम्र सिर्फ पढ़ने की है और आगे बढ़ने की है।
बिल्कुल,
अगर आज हर किशोर उम्र के युवक युवतियाँ ऐसे ही रबिता की तरह समझदारी से काम ले तो HIV से संबंधित किसी भी समस्या का सामना उन्हें न करना पड़े।
सही कहा प्रेमा तुमने, वैसे भी किशोरावस्था होती है लड़कपन की उम्र, और इस उम्र में गलतियां कर बैठना जीवन भर के लिए घातक हो सकता है।
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।
तो दोस्तों अब समय आ चुका है प्रोग्राम के अंतिम सेगमेंट यानी क्या किया जाए का।
दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उसके मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के रूप में सभी की आम राय क्या होगी, आइए सुनते हैं।
यदि मेरे घर में कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है तो मैं उसे पूरा उत्साह दूंगी, हिम्मत दूंगी कि वह ये न रख पाए कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। उससे कोई भेदभाव नहीं होने दूंगी, उसे इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसे HIV है। उसके खाने का खुद पूरा ध्यान रखूंगी जिससे उसकी बची हुई जो जिंदगी वो सही ढंग से रह सके।
ऐसा नहीं है कि उसको हम ये सोचेंगे कि भाई HIV पॉजिटिव है तो इसको हम अलग कर दें या घृणित दृष्टि से देखें। हम उसे जो है उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसे हम पहले उसे करते आए थे और आगे भी हम उसको उसी तरह से रखेंगे, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, इस वजह से जो है मुझे किसी प्रकार से जो है मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं।
यदि मेरे घर में कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो मैं ये नहीं सोचती कि वो मुझसे अलग है। मैंने उसके साथ बचपन से या अपनी जिंदगी में जितने पल उसके साथ बिताए हैं, जैसा व्यवहार किया है वैसा ही आज भी करूंगी, वैसा ही आगे भी करूंगी।
जैसे पहले था, वो मेंबर है तो मेंबर है, ऐसा नहीं कि ये इससे एड्स हो गए तो ये अलग हो गए, हमसे अलग नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी सभी की राय, और जाते जाते हम आपको फिर बता दें कि आईड्यूसिंग मीडिया कंबाइन द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से हो रहा है। और साथ ही हम आभारी हैं अपने साथियों हेवलवानी सामुदायिक रेडियो और मंदाकिनी की आवाज़ और दिल्ली मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं के।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।
Yeah.